एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, अभिजीत वी बैनर्जी और एस्थर डिफ्लो की गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स।
नमस्कार।
हाँ, ये किताब वाकई बहुत अहम है, खासकर आज के माहौल में।
बिल्कुल।
क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं आप्रवासन यानी इमिग्रेशन, फिर ये ट्रेड वॉर्स, असमानता, क्लाइमेट चेंज, कितने सारे मुश्किल मुद्दे हैं।
सही कहा। और इन पर जो बहस होती है वो अक्सर मतलब तथ्यों से ज्यादा भावनाओं पर आधारित होती है।
हाँ, और ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स जो शायद मदद कर सकती है वो या तो बहुत कठिन लगती है या फिर उसके नाम पर कुछ ऐसी आधी अधूरी बातें होती हैं जो गुमराह करती हैं।
बिल्कुल। और ये किताब इसी गैप को भरने की कोशिश करती है। ये बताती है कि कैसे अच्छा अर्थशास्त्र मतलब सबूतों पर आधारित बारीकियों को समझने वाली सोच हमें इस मुश्किल दौर में रास्ता दिखा सकती है।
अच्छा, अर्थशास्त्र, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। और इसके लेखक भी तो कोई साधारण लोग नहीं है, नोबेल पुरस्कार विजेता है।
हाँ बिल्कुल। अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो दोनों पति पत्नी हैं, MIT में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और उन्होंने जे पायल की सह स्थापना भी की है।
जे पायल, हाँ, अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, ये तो बहुत मशहूर है।
हाँ, ये लैब दुनिया भर में प्रयोग करके पता लगाती है कि गरीबी कम करने के कौन से तरीके वाकई काम करते हैं।
और इसी काम के लिए, गरीबी कम करने के उनके एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के लिए, उन्हें 2019 में माइकल क्रेमर के साथ इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। पर ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच या RCTs, ये है क्या असल में? सुनने में थोड़ा भारी लगता है।
नहीं देखिए, ये बहुत सीधा सा तरीका है, जैसे दवाइयों के ट्रायल होते हैं ना।
हाँ,
कि कुछ लोगों को दवा दी, कुछ को नहीं, फिर देखा कि असर हुआ या नहीं। बस वैसे ही ये लोग सामाजिक नीतियों के साथ करते हैं। मान लीजिए ये देखना है कि स्कूल में मुफ्त खाना देने से पढ़ाई बेहतर होती है या नहीं।
अच्छा,
तो कुछ स्कूलों में देंगे, कुछ में नहीं, फिर नतीजों की तुलना करेंगे। इससे पता चलता है कि पॉलिसी काम कर रही है या बस पैसा बर्बाद हो रहा है।
वाह, मतलब अंदाजे नहीं, पक्के सबूत। और ये खुद को प्लम्बर कहते हैं, भविष्यवक्ता नहीं। ये बड़ी मजेदार बात है।
हाँ, क्योंकि उनका मानना है कि इकोनॉमिस्ट का काम कोई भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि समाज की जो जटिल समस्याएं हैं उनकी पाइपलाइन को समझना है, देखना है कि दिक्कत कहाँ है, लीकेज कहाँ है,
और फिर छोटे छोटे प्रैक्टिकल तरीकों से उसे ठीक करने की कोशिश करना।
बिल्कुल। उनकी पिछली किताब पुअर इकोनॉमिक्स भी इसी पर थी। उसने भी गरीबी पर हमारी सोच बदली थी।
तो अब इतने सालों के अनुभव के बाद वो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स में विकसित देशों की समस्याओं पर बात कर रहे हैं। तो इस किताब का मतलब मेन आर्ग्यूमेंट क्या है?
देखिए, किताब का मूल विचार ये है कि आज की कई बड़ी दिक्कतें बुरे अर्थशास्त्र की वजह से हैं।
बुरा अर्थशास्त्र, ये क्या होता है?
बुरा अर्थशास्त्र मतलब वो सिद्धांत जो बहुत सरल हैं, अक्सर किसी विचारधारा से बंधे होते हैं और असल दुनिया की जटिलताओं को नजरअंदाज करते हैं।
जैसे ये मान लेना कि बाजार हमेशा सब ठीक कर देगा,
या फिर जैसे वो कहते हैं कि बाहर से आने वाले लोग सारी नौकरियां ले लेते हैं।
हाँ, या ये कि फ्री ट्रेड से हमेशा हर किसी को फायदा होता है।
ये सब बुरे अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं।
और किताब इसके मुकाबले अच्छा अर्थशास्त्र रखती है, तो वो कैसा है?
अच्छा अर्थशास्त्र सबूतों पर आधारित होता है। वो मानता है कि दुनिया उलझी हुई है, आसान जवाब अक्सर गलत होते हैं। वो विनम्र होता है, मतलब ये दावा नहीं करता कि उसके पास हर चीज का हल है।
और शायद इंसानों को भी ध्यान में रखता है, सिर्फ आंकड़ों को नहीं।
बिल्कुल सही। ये मानवीय गरिमा, लोगों के व्यवहार, उनकी उम्मीदें, उनके डर, इन सबको महत्व देता है। ये मानता है कि लोग सिर्फ नफा नुकसान देखने वाली मशीनें नहीं हैं।
तो ये किताब असल में आजकल की जो बड़ी बड़ी बहसें हैं, इमिग्रेशन, ट्रेड, ग्रोथ, इन सबको सबूतों की रोशनी में देखती है।
हाँ, ये इन तमाम मुद्दों को लेती है और पूछती है कि डेटा क्या कहता है, जमीनी शोध क्या बताता है, बजाय इसके कि हम बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लें। और अक्सर जो सबूत मिलते हैं वो प्रचलित धारणाओं से बिल्कुल अलग होते हैं।
चलिए फिर कुछ मुद्दों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आप प्रवासन से शुरू करें, इमिग्रेशन, इसको लेकर तो बहुत डर रहता है कि भाई बाहर वाले आएंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, तनख्वाहें कम हो जाएंगी।
हाँ, ये डर बहुत आम है, लेकिन किताब बताती है कि इकोनॉमिस्ट ने इस पर बहुत रिसर्च की है और ज्यादातर सबूत यही दिखाते हैं कि आप प्रवासन का लोकल लोगों की नौकरियों या वेतन पर बहुत कम या न के बराबर नेगेटिव असर होता है।
सच में? लेकिन कैसे? लोग ज्यादा होंगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना?
देखिए, इकोनॉमी कोई केक नहीं है जो बट जाएगा, वो बढ़ती भी है। आप प्रवासी सिर्फ नौकरी लेते नहीं, वो खर्च भी करते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं, کئی بار وہ نئے بزنس شروع کرتے ہیں، اور اکثر وہ کام کرتے ہیں جو شاید لوکل لوگ نہیں کرنا چاہتے یا جہاں لیبر کی کمی ہوتی ہے۔
اچھا، تو کتاب کیا کہتی ہے کہ یہ ڈر اصل میں آرتھک نہیں ہے؟
ہاں، کتاب کا ترک ہے کہ آپ پرواسن کا ورودھ اکثر آرتھک کم اور سانسکرتک یا ساماجک زیادہ ہوتا ہے، پر اسے جائز ٹھہرانے کے لیے برے ارتھشاستر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ میامی کے ماریل بوٹلف کا ادھان دیتے ہیں۔ 1980 میں جب کیوبا سے اچانک بہت سارے لوگ آئے، تب بھی وہاں کے کم کشل لوگوں کے ویتن پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔
یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اب ویاپار پر آتے ہیں، ٹریڈ۔ اس کے بارے میں بھی سیدھی سی بات کہی جاتی ہے کہ فری ٹریڈ اچھا ہے سب کے لیے۔
یہاں بھی کتاب ایک بیلنسڈ ویو دیتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ ہاں، تھیوری میں ٹریڈ سے دیش امیر ہو سکتا ہے، اسپیشلائزیشن بڑھتا ہے، سامان سستا ملتا ہے،
لیکن
کوئی لیکن ہے اس میں؟ لیکن یہ ہے کہ ارتھشاستریوں نے اور نیتاؤں نے بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ ٹریڈ کے فائدے اور نقصان بٹتے کیسے ہیں، اور یہ بٹوارا بہت آسمان ہوتا ہے۔
مطلب فائدہ کسی کو، نقصان کسی اور کو۔
بالکل۔ فائدے جیسے سستا سامان، وہ تو پوری آبادی میں تھوڑا تھوڑا پھیل جاتے ہیں، لیکن نقصان جیسے کوئی فیکٹری بند ہو گئی، نوکریاں چلی گئیں، وہ کچھ خاص علاقوں یا لوگوں پر کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے۔
ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔
وہ چائنا شاک کا ذکر کرتے ہیں۔ جب امریکہ نے چین سے امپورٹ کھولا، تو جن علاقوں میں انڈسٹریز سیدھے کمپٹیشن میں آئیں، وہاں لمبے سمے تک نوکریاں کم رہیں، ویتن گرے، اور سماجک تنابانا بھی بگڑا۔
لوگ آسانی سے
کہیں اور نہیں جاتے۔
ہاں،
اسی کو وہ سٹکینس یا چپچپاہٹ کہتے ہیں۔
یہ چپچپاہٹ یہ کیا ہے؟ ٹھیک سے،
سٹکینس کا مطلب ہے کہ ارتھ ویوستھا اور لوگ اتنے فلیکسیبل نہیں ہوتے جتنے اکنامک ماڈلز مان لیتے ہیں۔
اچھا،
تھیوری کہتی ہے کہ ایک جگہ نوکری گئی تو لوگ دوسری جگہ چلے جائیں گے یا کچھ نیا سیکھ لیں گے، پر اصلیت میں ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، ان کا ایک سماج ہوتا ہے، نئی اسکل سیکھنا بھی آسان نہیں۔
صحیح بات ہے۔
تو جب کوئی آرتھک جھٹکا لگتا ہے، جیسے ٹریڈ سے یا ٹیکنالوجی بدلنے سے، تو اس کا اثر کئی لوگوں پر بہت گہرا اور لمبا ہوتا ہے، وہ چپکا رہتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں اس چپچپاہٹ کو سمجھنا ہوگا،
اور شاید ان لوگوں کی مدد کے لیے کچھ کرنا ہوگا جو پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ صرف یہ مان لینا کافی نہیں کہ اوور آل اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے۔
بالکل، یہی ان کا پوائنٹ ہے۔ اچھا، اب گروتھ کی بات کریں، جی ڈی پی گروتھ۔ آج کل تو جیسے ہر دیش اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔
ہاں، جیسے یہی سب کچھ ہو۔ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟
کتاب اس جنون پر سوال اٹھاتی ہے۔ پہلی بات، وکست دیشوں میں گروتھ ویسے بھی دھیمی ہو گئی ہے، لیکن اس سے بھی ضروری بات، جی ڈی پی یہ نہیں ماپتا کہ لوگوں کی زندگی اصل میں کیسی ہے۔
ہاں، مطلب خوشی، صحت، صاف ہوا، یہ سب تو جی ڈی پی میں نہیں آتا۔
بالکل۔ پریاورن کی کوالٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن کی کوالٹی، آپ کے پاس کتنا خالی وقت ہے، سماج میں کتنا بھروسہ ہے، یہ سب جی ڈی پی میں نہیں دکھتا۔ ہو سکتا ہے جی ڈی پی بڑھ رہا ہو، پر لوگوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہو۔
تو پھر کس پر دھیان دینا چاہیے؟
لیکھکوں کا سجھاؤ ہے کہ ہمیں سیدھے ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے جو زندگی کو بہتر بناتی ہیں، جیسے اچھی ہیلتھ کیئر، صاف ہوا، پانی، اچھی شکشا، سوشل سیفٹی نیٹ۔
مطلب جی ڈی پی کو پوچھنے کے بجائے اصل میں جو چیزیں معنی رکھتی ہیں ان پر دھیان دیں۔
ہاں، جی ڈی پی کو اس کے سنگھاسن سے اتارنا ہوگا، پرگتی کو زیادہ ہولسٹک طریقے سے دیکھنا ہوگا۔ جی ڈی پی ایک ٹول ہے، پر وہ مقصد نہیں ہے۔
اور سماجک نیتیاں جیسے غریبوں کو سیدھے کیش دینا، کیش ٹرانسفرز، اس کو لے کر بھی ایک ڈر رہتا ہے کہ لوگ آلسی ہو جائیں گے۔
ہاں، یہ ایک اور بڑا میتھک ہے جسے کتاب توڑتی ہے۔ دنیا بھر میں اتنے سارے پریوگ ہوئے ہیں، بھارت میں بھی۔
ہاں،
کیا دکھاتے ہیں وہ؟ وہ بار بار یہی دکھاتے ہیں کہ جب غریب پریواروں کو سیدھے پیسہ ملتا ہے تو وہ کام کرنا بند نہیں کرتے۔
بالکل نہیں۔
تو کیا کرتے ہیں اس پیسے کا؟
وہ اسے کھانے پینے پر، بچوں کی پڑھائی پر، صحت پر، یا کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرنے میں لگاتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ غریبوں پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
کتاب یو بی آئی یعنی یونیورسل بیسک انکم پر بھی بات کرتی ہے، اس کے فائدے بھی بتاتی ہے اور چنوتیاں بھی۔
اور آخر میں ایک اور بڑا مدعا، سرکار پر بھروسہ۔ آج کل لگتا ہے جیسے لوگوں کا سسٹم پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، ہر طرف غصہ ہے، دھروویکرن ہے۔
کتاب کا ترک ہے کہ یہ جو بھروسے کا سنکٹ ہے، اس کا ایک بڑا کارن وہ آرتھک نیتیاں ہیں جنہوں نے سماج میں اتھل پتھل مچائی اور سرکاریں اسے ٹھیک سے سنبھال نہیں پائیں۔
مطلب جب لوگوں کو لگتا ہے کہ سسٹم ان کے خلاف ہے یا صرف کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے،
تو ان کا بھروسہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔
بالکل۔
وشواس دوبارہ بنانے کے لیے سرکاروں کو نہ صرف قابل بننا ہوگا بلکہ نشپکش بھی دکھنا ہوگا، اور اس میں اچھا ارتھشاستر، مطلب ثبوتوں پر آدھارت، पारदर्शी और मानवीय नीतियाँ बहुत मदद कर सकती हैं।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस किताब के सबसे बड़े संदेश क्या हैं?
मेरे ख्याल से पहला तो यही है कि बुरे अर्थशास्त्र से बचें, जो विचारधारा पर आधारित हो या चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना दे। अच्छे अर्थशास्त्र को अपनाएं जो सबूतों पर आधारित हो और बारीकियों को समझें।
हाँ, और आसान जवाबों से सावधान रहें। दूसरा आपने बताया चिपचिपाहट।
बिल्कुल, दुनिया स्टिकी है, बदलाव धीमे और अक्सर दर्दनाक होते हैं। नीतियां बनाते वक्त इस सच्चाई को मानना होगा। हम भारत में ही देखते हैं, जब कोई फैक्ट्री बंद होती है तो मजदूरों के लिए नई शुरुआत कितनी मुश्किल होती है।
तीसरा पॉइंट मुझे बहुत अहम लगा, मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी।
हाँ, लोग सिर्फ पैसे के लिए फैसले नहीं लेते, सम्मान, पहचान, समाज में उनकी जगह, ये सब बहुत मायने रखता है। इकोनॉमिक्स को इसे समझना होगा।
और चौथा?
चौथा, एक स्मार्ट, काबिल और भरोसेमंद सरकार की जरूरत। बाजार अकेले हमारी बड़ी समस्याएं हल नहीं कर सकता, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या बढ़ती असमानता। सरकार को सोच समझकर सबूतों के आधार पर दखल देना होगा।
किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, कोई खास कोट्स या आइडियाज जो आपको याद आ रहे हो?
हाँ, एक तो उनका ये कहना कि अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण है कि इसे सिर्फ अर्थशास्त्रियों पर नहीं छोड़ा जा सकता।
हाँ, ये मुझे भी बहुत पसंद आया। मतलब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन मुद्दों को समझें।
बिल्कुल, और एक और बात, दुनिया एक उलझी हुई चिपचिपी जगह है। अर्थशास्त्री का काम उस उलझन को समझना है, उसे नज़रअंदाज करना नहीं। ये उन सिंपल मॉडल्स पर एक तरह की टिप्पणी है जो असलियत से दूर होते हैं।
सही है, और ट्रेड वाली बात भी कि असली मुद्दा ये नहीं कि व्यापार बुरा है, बल्कि ये कि मुख्य धारा का अर्थशास्त्र इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ रहा कि लागतें बहुत वास्तविक थीं और उन्हें चुकाने वाले वे लोग नहीं थे जिन्हें फायदा मिला।
ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी पॉलिसी का असर सब पर एक जैसा नहीं होता।
हाँ बिल्कुल, और ये सब बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल है।
कैसे एक आम इंसान क्या करे इन आइडियाज का?
देखिए, सबसे पहले तो हम मीडिया में या नेताओं से जो आर्थिक दावे सुनते हैं उन पर सवाल उठा सकते हैं।
अच्छा,
जैसे?
जैसे अगर कोई कहे कि इस पॉलिसी से सबको फायदा होगा, तो हम पूछ सकते हैं, सच में सबको? कैसे? इसका सबूत क्या है? और जिनका नुकसान होगा उनके लिए क्या सोचा है?
हाँ, या जब कोई आप्रवासियों को सारी दिक्कतों की जड़ बताए तो हम याद कर सकते हैं कि रिसर्च क्या कहती है, क्या ये सच है या बस एक आसान निशाना।
बिल्कुल, यह हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से रोकता है, और शायद यह हमें उन लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा हमदर्दी महसूस करने में मदद करता है जो आर्थिक बदलावों से जूझ रहे हैं।
हम समझ सकते हैं कि उनकी परेशानी सिर्फ उनकी गलती नहीं बल्कि शायद सिस्टम की चिपचिपाहट या गलत नीतियों का भी नतीजा है।
हाँ, इससे समाज में शायद थोड़ी ज्यादा समझदारी और सहानुभूति बढ़े।
तो इस पूरी चर्चा के आखिर में आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, या कोई ऐसी बात जिसने आपको चौंकाया हो?
मेरे लिए शायद ये प्लम्बर वाली बात, ये आइडिया कि हमें बड़े बड़े सिद्धांत बनाने वालों से ज्यादा उन लोगों की जरूरत है जो जमीन पर छोटी छोटी दिक्कतों को समझें और उनके प्रैक्टिकल हल निकालें। और हाँ, मानवीय गरिमा को इकोनॉमिक्स के सेंटर में रखना, ये बहुत जरूरी है।
मेरे लिए सबसे अहम बात ये रही कि अर्थव्यवस्था कोई मशीन नहीं है, ये इंसानों से चलती है, उनकी उम्मीदों, उनके डरों, उनके रिश्तों से। इसलिए इकोनॉमिक्स को भी ज्यादा मानवीय होना पड़ेगा। आसान मशीनी जवाब अक्सर गलत होते हैं, शायद खतरनाक भी।
सही कहा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।